وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حج کے سفر میں مختلف مقامات پہ دعا مانگنے کا موقع ملتا ہے. یہ بہت ہی اللہ رب العزت کی رحمت ہے, مہربانی ہے کہ وہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. چنانچہ مزدلفہ میں دعائیں قبول, مقام عرفہ پہ دعائیں قبول, منا میں دعائیں قبول. پھر حاجی جب منا سے واپس آ جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید اب دعاؤں کے مقامات مکمل ہو گئے. حرم میں بھی علماء نے 12 ایسے مقامات لکھے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر کوئی اللہ کا ولی بتائے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پہ اگر دعا مانگو گے تو قبول ہوگی, تو آپ سوچیں کہ ہم کتنی کوشش کریں گے کہ ہم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے دعا مانگیں تاکہ دعا قبول ہو جائے. اور یہاں تو انبیاء کے سردار, اولیاء کے سردار, اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو حرم کی ان 12 جگہوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے, اور جیسے جیسے موقع ملے ہمیں وہاں بیٹھ کے دعائیں خوب کرنی چاہیے. عجیب بات یہ ہے کہ حاجی صاحب کو گھڑیوں کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے, کس کمپنی کی گھڑی کی کیا قیمت ہے, لیکن ان مقامات دعا کا پتہ نہیں ہوتا. تعجب کی بات ہے. جس بندے کو تلاش ہوتی ہے وہ ڈھونڈتا ہے. آپ دیکھیں کئی حاجی حضرات نماز پڑھتے ہیں اور پھر وہ گھڑیوں کی دکانوں پہ پہنچ جاتے ہیں, تلاش کر رہے ہوتے ہیں اچھی گھڑی کم سے کم قیمت پہ, خوبصورت سے خوبصورت گھڑی کم سے کم قیمت پہ. اور جن لوگوں کو اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروانی ہوتی ہیں وہ ان مقامات کی تلاش میں ہوتے ہیں. دن میں رات میں کوئی موقع ایسا ڈھونڈیں کہ جب ان مقامات پہ دعائیں کرنے کا موقع نصیب ہو جائے. انہیں سب سے پہلا مقام ہے حجر اسود کے سامنے. حجر اسود کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا, یمین اللہ فی الارض, اور زمین میں اللہ تعالی کا دائیں ہاتھ ہے. جیسے آپ کسی سے دائیں ہاتھ کے ساتھ سلام کرتے ہیں, اسی طرح گویا اگر آپ اللہ تعالیٰ کو سلام کرنا چاہیں تو حجر اسود اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ انہوں نے نبی شام کے ہاتھوں پر بیعت کی, سعادت پائی. بعد میں آنے والی امت کو تو یہ سعادت نہیں ملی. تو ان کی کمپنسیشن کے لیے اللہ نے حجر اسود بنا دیا کہ جو آدمی آ کر حجر اسود کا استلام کرے گا اس کو اللہ تعالی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کا شرف نصیب ہو جائے گا. تو آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ نے اپنا دایاں ہاتھ فرمایا. یہ پتھر جنت کا پتھر تھا جس کو زمین پر اتارا گیا, اور اس کی صفات ہیں. اس کی صفت یہ ہے کہ انسان جس دل کی کیفیت کے ساتھ اس کو استلام کرتا ہے وہ دل کی کیفیت سے محفوظ کر لیتا ہے. آج کے دور میں اس بات کو سمجھنا آسان ہے. ویڈیو کیمرہ دیکھو مومنٹ کو کیسے کیچ کر لیتا ہے, اور آپ کی وہ تصویر اس کے اندر رہتی ہے جب دیکھنا چاہیں. یہی سمجھیں کہ حجر اسود بھی اللہ تعالی کی طرف سے بنا ہوا ویڈیو کیمرہ ہے جو دلوں کی کیفیت کا ایکس رے کر لیتا ہے. تو جس دل کی کیفیت کے ساتھ آپ اس کو سلام کریں گے اسی دل کی کیفیت کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالی سے ملیں گے. इसलिए हजरत अस्वद का इस्तेमाल करने से पहले अपने दिल को मां सेवा से खाली कर लेना चाहिए। तरकतुल्लात वल उज्जा जमीया, मैंने सब लात और उज्जा छोड़ दिए। कजालिक यफअलु रजुलुल बसीर, जो बसीर इंसान होता है वो ऐसे ही करता है, मां सेवा को छोड़ देता है अल्लाह के ताल्लुक की खातिर। तो हजरत अस्वद का इस्तेमाल इतना अहम है, उसके सामने जो दुआ मांगी जाए वो भी बड़ी अहम होती है। हजरत अस्वद को बोसा दे सकें आसानी के साथ तो बहुत अच्छा, लेकिन हंगामे के साथ, ढींगा मुश्ती के साथ, जोर आजमाई के साथ उसको बोसा देना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरों को ईजा पहुंचाना ये हराम है। अब एक फजीलत पर अमल करने के लिए दूसरों को ईजा देना ये जायज नहीं है। अलबत्ता ऐसे भी मौके होते हैं कि जब बगैर ढींगा मुश्ती के इंसान बोसा ले लेता है, मिसाल के तौर पे सफाई वालों का टाइम होता है, उस टाइम पे वो आके रस्सी से घेरा कर लेते हैं और जितने लोग अंदर हों उनको कहते हैं कि आप लोग बोसा दें और बाहर चले जाएं, तो वो लाइन बनवा देते हैं। उस वक्त बोसा देना बहुत आसान होता है। अफजल तो ये है कि इंसान तवाफ के दौरान बोसा दे, ये सुन्नत अमल है, उसके अलावा नहीं। लेकिन मोहब्बत है, दिल चाहता है कि बोसे का मौका मिल जाए, तो जब भी मौका मिले तो ये एक अच्छा मौका है। हमने देखा कि औरतों के लिए रात में कई मर्तबा शुरते लाइन बनवा देते हैं, उस वक्त मर्द करीब नहीं आने देते, वो तो वो औरतों के लिए अच्छा मौका होता है। तो ऐसे मौके ढूंढें, दिन में रात में कुछ औकात हैं कि जब ये मौके मिल जाते हैं, इसका अता पता रखना पड़ता है। जो वहां खिदमत पे मुतय्यन है, पानी सफाई करने वाले, उनसे पूछें, मालूमात करें, आपको पता चल जाएगा। हमने तो ऐसा भी देखा कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं उम्रे पे और वो भाग भाग के रोजाना तीन दफा, चार दफा, पांच दफा जाके हजरत अस्वद का बोसा लेके आ जाते हैं, तो इसको पता रखना पड़ता है। बहरहाल एक तो है हजरत अस्वद का बोसा देना, नबी ने सामने हजरत अस्वद को बोसा दिया तो हदीस मुबारक में है कि आपने बहुत देर अपने लब मुबारक हजरत अस्वद पर लगाए रखे, और नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर को मना फरमाया कि उमर तुम सेहतमंद आदमी हो, हजरत अस्वद के लिए तुम दूसरों के साथ जोर आजमाई मत करना। इससे पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने भी इसको पसंद नहीं किया कि इंसान जोर आजमाई करके बोसा ले। मौका मिले तो जरूर मौके से फायदा उठाए, न मिले तो बस दुआ मांगे, सामने खड़े होकर भी दुआ मांग लेगा तो अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। तो फुकहा ने लिखा है कि हजरत अस्वद के महाज में, महाज कहते हैं सामने, यानी जो कोना हजरत अस्वद का ऐसी दी लाइन जहां तक ये सब्ज रोशनी लगी होती है, उस लाइन में पीछे हटके भी अगर आप दुआ मांगेंगे तो वहां भी दुआ कबूल होगी। तरीका यह है कि उस लाइन पर जहां इस्तलाम करते हैं आप पीछे हटके जहां तवाफ खत्म होता है वहां दो रकत नफल अदा कर लें और उसके बाद दुआ मांग लें, वहां की दुआएं यकीनी कबूल होती हैं। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया और इसको फुकहा ने अपनी किताबों में लिखा है, इसलिए यकीन के साथ दुआ मांगनी चाहिए कि वहां दुआ यकीनन कबूल होगी। हमने अरब लोगों को देखा है, उनके मर्द औरतें आमतौर पर उस लाइन की सीध में नफल पढ़ रहे होते हैं और वो दुआएं भी मांगते हैं, तो ये चीज एक्सेप्टेड चीज है अरबों में भी और हमारे अंदर भी कि वहां पर दुआएं कबूल होती हैं। तो हजरत अस्वद के सामने दुआ मांगना ये पहली जगह है। दूसरी जगह है मुल्तजिम पे दुआ मांगना। मुल्तजिम कहते हैं हजरत अस्वद और बाब काबा के दरमियान जो दो ढाई मीटर का फासला है उसको मुल्तजिम कहते हैं। एक तरफ हजरत अस्वद है और एक तरफ बाब काबा है, दरमियान की जगह। आपने देखा होगा कि वहां पर लोग लिपटे हुए होते हैं, चिमटे हुए होते हैं, जैसे बच्चा मां के सीने से लिपट जाता है ऐसे लोग उस जगह पर आकर लिपट जाते हैं। हजरतुल विदा पर नबी इस्लाम ने ऐसे ही किया कि आप सलम तशरीफ लाए और आकर वहां आपने अपना सीना मुबारक बैतुल्लाह की दीवार के साथ लगा दिया और रुखसार मुबारक भी साथ लगा दिया और दोनों हाथ ऊपर थे, यानी जैसे बच्चा मां के सीने से लिपटता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह लिपट गए और आपने दुआएं मांगी। फिर जब आप पीछे हटे तो उमर लानो साथ खड़े थे, उन्होंने देखा कि नबी इस्लाम की मुबारक आंखों में आंसू हैं, तो वो बड़े हैरान हुए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, तो नबी साहब ने फरमाया उमर ये वो जगह है जहां आंसू बहाए जाते हैं। साफ जहर है, बिछा हुआ बंदा अपने महबूब से गले लगे तो खुशी के आंसू आ जाते हैं, तशक्कुर के आंसू आ जाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्तजिम से आपके लिपटे थे तो आपकी आंखों से शुक्र के आंसू आ गए थे। तो हम भी वहां उस जगह पर जाकर लिपटें और दुआएं मांगें। उस जगह पर बहुत देर लिपटना ये ठीक नहीं है कि जी हम पौना घंटा लिपटे रहे, और लोग भी तो हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। हाँ ये है कि पहले से दुआ जहन में सोचिए, वहां जाएं और दो तीन मिनट में, पांच मिनट के अंदर अंदर बस दुआ मांगें और दूसरों को मौका दें। हमने ये देखा है कि जो दुआ अल्लाह ने कबूल करनी होती है वो याद आती है, जो कबूल नहीं करनी होती वो भूल जाती है। सोच सोच के दुआएं जाते हैं, वहां जाके दुआ भूल जाती है, इसका मतलब है कबूल नहीं होनी थी इसलिए भूल गई। तो मुल्तजिम से लिपट के दुआ मांगना, हदीस पाक में है कि वहां की दुआ कबूल होती है। हजरत शेख हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फजाइल हज में हदीस कोट की है कि नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा ने यह रवायत की कि इस जगह पर दुआ मांगी जाए तो कबूल होती है। फिर शेख हदीस रहमतुल्लाह कमेंट्री करते हैं, वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक जितने रावी थे जिन्होंने इस हदीस को नकल किया, नरेट किया, हर हर ने यह तस्दीक भी की कि मेरी भी दुआ कबूल हुई, मेरी भी दुआ कबूल हुई, मेरी भी दुआ कबूल हुई। और फरमाते हैं कि मैं भी तस्दीक करता हूं कि मैंने वहां जितनी दुआएं मांगी मेरी भी दुआएं कबूल हुई। यानी जैसे इस हदीस को सनद मुत्तसिल का दर्जा हासिल है, इसके साथ रावियों की इस बात को भी सनद मुत्तसिल का दर्जा हासिल है कि वहां दुआएं कबूल होती हैं। तो अब आप सोचिए कि वहां दुआ मांगने की कितनी ज्यादा अहमियत है। हमारे एक दोस्त थे, इंजीनियर थे, वो एक दफा उमरे पे आए। कहते हैं कि उमरे के बाद में मुल्तजिम पे गया, जब वहां दुआ मांगने लगा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं बेटे के लिए दुआ करूं, अल्लाह मेरे बेटे को हाफिज कुरान बना। मैंने दुआ मांगी। वापस जब अपने शहर पहुंचे, शायद रियाज से या कहीं और से आए थे, वो कहते हैं कि जब मैं घर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरे टेलीफोन की घंटी बज रही थी। मैं भागा, मैंने टेलीफोन उठाया तो बीवी पाकिस्तान बच्चों के साथ गई हुई थी, उसने फोन पाकिस्तान से किया था। मैंने पूछा खैरियत है, कैसे फोन किया? कहने लगी कई दिन से सोच रही थी अपने बच्चे को हिफ्ज कुरान के लिए छोड़ूं, आज मैं उसे मदरसे में दाखिल करवा के आई हूं, इतला के लिए आपको फोन कर दिया है। ये दुआ मांग के गए और उधर बीवी ने बच्चे को मदरसे में दाखिल ही करवा दिया हिफ्ज कुरान के लिए। यूं दुआएं कबूल होती हैं, नकद कबूल होती हैं। हमने अपनी जिंदगी में मुतअद्दिद दोस्तों की बातें सुनी कि उन्होंने जो दुआ मांगी अल्लाह ने उस दुआ को कबूल फरमाया। लिहाजा मुल्तजिम पे दुआ मांगना इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। उस पर दुआ मांगे, दिन में मुश्किल है कि धूप होती है, रात में आसान होती है। अच्छा, रात में हमने देखा कि कई मरतबा औरतें भी उस जगह पर कब्जा कर लेती हैं, क्योंकि अरब औरतें भी उस जगह पर लिपट के दुआ मांगती हैं। तो जब उनका कब्जा होता है फिर मर्द करीब नहीं जा सकते, तो ऐसे मौके पे हमारी औरतें भी जाके वहां दुआ मांग सकती हैं। लेकिन जब मर्दों का वक्त हो तो औरतों को चाहिए कि वो पीछे रहें और दूर ही खड़ी होकर मांग लेंगी तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमा लेंगे। तो पहला मकाम था हजर अस्वद के महाज में, और दूसरा मकाम था मुल्तजिम से लिपट के दुआ मांगे, और तीसरा मकाम है बाब काबा के, बाब काबा की दहलीज पकड़ के दुआ मांगे। ये तो आप जानते ही हैं कि किसी दरवाजे की दहलीज पे कोई बैठ जाए, उसको थाम ले, पकड़ ले, तो जो उस दरवाजे का मालिक होता है वो फिर उसकी बात को कबूल कर लेता है। तो बाब काबा की दहलीज पकड़ के दुआ मांगेंगे यकीनन कबूल होगी। तो उस जगह आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हाथ से दहलीज को पकड़ के दुआ मांग रहे होते हैं, बाब काबा से फिर एक बार लिपट कर रो लूं, बाब काबा से फिर एक बार लिपट कर रो लूं, और कुछ अश्क नदामत के बहा लूं तो चलो। इंसान कैसे वहां से पीछे हटे, कुछ अश्क नदामत के बहाए, कुछ आंसू बहाए, कुछ अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह के दरवाजे को पकड़ के यूं समझे कि मैं एक फकीर हूं और ये बड़े सखी का दरवाजा है। जिस तरह एक अयालदार अपाहज सखी के दरवाजे पे हाजिर होता है कि अगर ये दरवाजा खुल गया तो मेरे बच्चों का फाकर खत्म हो जाएगा, ہم بھی اسی طرح حاضر ہوں اس کیفیت کے ساتھ کہ ہم ایک بڑے سخی کے دروازے پہ حاضر ہو رہے ہیں، اگر یہ دروازہ کھل گیا تو ہمارے بھی سب مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے فقیر بڑے دروازے کو دیکھتے ہیں تو اونچی صدا لگاتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے خالی نہیں جائیں گے۔ یہ تو کائنات کا سب سے بڑا دروازہ ہے، ہم بھی پکے دل کے یقین کے ساتھ وہاں پہنچیں کہ اس دروازے پہ ہم مانگیں گے تو یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے در سے خالی نہیں لٹاتے۔ دنیا کے سخی پسند نہیں کرتے کہ ان کے دروازے سے کوئی خالی جائے، یا کوئی یہ لفظ کہہ دے جی کہ مجھے تو آپ کے دروازے سے کچھ نہ ملا، وہ یہ تانا سننا گوارا نہیں کرتے۔ اگر دنیا کے سخی یہ تانا سننا گوارا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ تو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، وہ کہاں پسند کریں گے کہ کوئی قیامت کے دن یہ کہے اللہ میں نے آپ کے دروازے سے مانگا اور مجھے وہاں سے بھی کچھ نہ ملا۔ یہ تو اللہ کا دروازہ ہے، ہم سے تو وہ اندھا فقیر اچھا نکلا۔ کہتے ہیں کہ ایک اندھا فقیر بھیک مانگتا پھر رہا تھا، اس نے ایک بڑا دروازہ دیکھا، اپنی لاٹھی سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ بڑے سائز کا دروازہ ہے، اس نے اونچی صدا لگائی کوئی آواز نہ آئی، پھر صدا لگائی کوئی آواز نہ آئی، جب تیسری مرتبہ آواز نہ آئی اس نے کہا یہ کس بخیل کا دروازہ ہے، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا۔ چھوٹے بچے نے کہا اندھے بخیل کس کا دروازہ ہے، آپ کو کون یہاں سے آواز دے گا؟ تو اندھے نے جب سنا یہ مسجد کا دروازہ ہے، اس نے اپنے کشکول کو توڑ زور سے زمین پہ دے مارا، اس کو توڑ دیا اور کہا اچھا اگر میں اللہ کے دروازے پہ آ پہنچے ہوں اب میں کسی اور دروازے پہ نہیں جایا کروں گا۔ تو اندر فقیر زیادہ عقل مند نکلا کہ جس نے پہچان لیا کہ میں اللہ کے در پہ آ پہنچا تو اب میرے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی ہمیں تو اللہ نے اپنے گھر میں اپنے دروازے پہ پہنچا دیا، یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، تو آپ سوچے نا کہ ہمیں یہاں کتنے یقین سے مانگنا چاہیے اور ہمیں کتنا یہاں ملے گا۔ بڑوں کی دین بھی بڑی ہوتی ہے، آپ یقین کریں کہ بس تھوڑا سا کرم ہو گیا تو ہمارے لیے وہ بھی بہت کافی ہے، ایک رحمت کا قطرہ بھی ہمیں مل گیا تو ہمارے لیے کافی ہے۔ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بگدا تیرا، جے ایک قطرہ مل جائے مینو تے کم بن جاوے میرا۔ ہمارا کام تو ایک قطرہ رحمت ملنے سے بن جائے گا، ہمارا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بیت اللہ کے دروازے سے لگ کے لپٹ کے دعا مانگنا یہ بھی قبولیت دعا کی بات ہے، ایسے دعا مانگے کہ بس لپٹ ہی جائیں اس دروازے سے، جیسے مجذوب رحمت اللہ نے لکھا نا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے ادھر تیری ادھر میری۔ ماشاءاللہ لگ جائے لپٹ جائے کہ میں نے تو لے کے ہی ہٹنا ہے اللہ، لیکن ہم اللہ کو منا کے نہ ہٹے تو پھر کہاں جائیں؟ کوئی در نہیں ہمارے پاس، کوئی اور جگہ نہیں ہمارے پاس، ایک ہی در ہے۔ ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا دوسرا کوئی در نہیں ہے، تو بس ہم نے تو جو بھی مانگنا ہے یہیں سے مانگنا ہے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، لو لگا کے مانگیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کس طرح کھولتے ہیں۔ پھر آگے ہے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے محاذ میں دو رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگنا یہ بھی قبولیت دعا کا مقام ہے۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو معمار کعبہ بنایا اور انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، چنانچہ ان کے نیچے ایک پتھر تھا، جب وہ اونچا ہونا چاہتے تھے تو یہ اونچا ہو جاتا تھا اور ان کو آسانی سے بیت اللہ شریف کے پتھر دیوار پر رکھنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشان رہ گئے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ چنانچہ دو پتھروں جو قدموں کے نشان اب بھی بنے ہوئے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ جگہ اتنی زیادہ ٹھوس نہیں بنی ہوئی تھی، بس ایک جگہ تھی جہاں یہ پتھر رکھ لیا گیا تھا، جہاں قدموں کے نشان تھے، سیلاب آتا تھا کئی مرتبہ بارش کا تو یہ پتھر بہ بھی جاتا تھا، ایک دفعہ اجیاد سے اٹھا کے لائے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ ایک مرتبہ تشریف لائے، انہوں نے اس پتھر کو اٹھایا، چھوٹا سا تو تھا، और इसको हरिदास और इसको जमजम के कुएं पर लेकर गए और डोल से पानी निकाल के कदमों के अंदर डाला और वहां से उन्होंने पानी नोश किया। ये इनकी मोहब्बत थी कि पांव के निशानात में पानी डाल के वहां से पिया उन्होंने। लेकिन जब देखा लोगों ने कि भाई ये पत्थर आगे पीछे हो जाता है तो गुम भी हो सकता है, तो अब उन्होंने यहां पर इसको बाकायदा शीशे के अंदर मजबूत लगा के बंद कर दिया ताकि महसूस हो जाए। ये अल्लाह ताला की कदरदानी है कि अल्लाह ताला ने कदरदानी कर दी कि देखो मैं इतना कदरदान हूं कि जो बंदा मेरा घर बनाता है मैं उसके कदमों के निशान को आने वालों के लिए मुसल्ला बना देता हूं। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ अपने लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह आप कितने कदरदान हैं कि जो आपका घर बनाता है उस बंदे के पांव के निशान को आपने आने वालों के लिए मुसल्ला करार दे दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह से बढ़कर यकीनन कोई कदरदान नहीं है। अल्लाह ताला सबसे बड़े कदरदान हैं। चुनाचे इस जगह पर हमें भी दुआएं मांगनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारी भी दुआओं को कबूल फरमाए। फिर उसके बाद है जमजम से दुआ मांगना। इस वक्त तो जमजम का कुआं नीचे बेसमेंट में चला गया, ऊपर शर्ट डाल दिया गया तो पता नहीं चलता, मगर ये जो मकाम इब्राहिम है इससे थोड़ा सा पहले और मुल्तजिम के सामने, यानी एक तरफ मकाम इब्राहिम एक तरफ मुल्तजिम, इन दोनों का जहां क्रॉस सेक्शन बनता है तो वहां नीचे एक कुआं है जिसको जमजम कहते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से अल्लाह ने उस जगह से पानी को जारी फरमा दिया गया था। वो पानी आज भी जारी है और इतना पानी निकलता है कि लाखों इंसानों को पूरा आ जाता है। अल्लाह की शान देखें, सुभान अल्लाह, कि लाखों लोग यहां भी पीते हैं और हरम मदीना में भी पानी पहुंचा दिया जाता है। क्या वो कुआं है, हालांकि कुएं का पानी तो 2-4 हजार बंदे मिलकर पीना चाहें तो पानी खत्म हो जाए, लेकिन ये कुआं अल्लाह ने अजीब जारी कर दिया कि लोग पीते भी हैं और अपने साथ घरों को भी लेके जाते हैं, तो लाखों लोग ले भी जाते हैं। और हमने तो ये देखा कि मक्का मुकरमा की बात नहीं, करीब करीब 100-100 किलोमीटर पर जो आबादियां हैं, जैसे जद्दा है या इसके करीब और दूसरी आबादी हैं, वहां के लोग भी आके 25-25-30-30 कंटेनर भर के ले जाते हैं और सारा महीना खुद इस्तेमाल करते हैं, तो उन घरों में भी इस्तेमाल होता है, खाने पकाने में भी और पीने में भी। इतना ज्यादा ये इस्तेमाल होता है, मगर अल्लाह ने बरकत ऐसी रख दी कि अभी भी वो कभी खत्म नहीं हुआ। कभी ये नहीं भी कि कुएं में पानी कम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की अजीब रहमत है कि कुआं जारी है। अच्छा, जमजम जो है इसके बहुत सारे फजाइल हैं। हदीस पाक में है कि बैतुल्लाह को देखना इबादत है, जमजम कुएं के अंदर देखना इबादत है, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है, तो जमजम कुएं के अंदर देखना भी इबादत है। अब एक चीज और भी ध्यान में रखिए कि नबी इस्लाम जब मेराज पर तशरीफ ले जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जमजम पे तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम नोश फरमाया और एक दो दिन पहले आपके सीने अनवर को जमजम से धोया गया। शक के सदर का जो वाकया पेश आया तो सीने अनवर को किस चीज से धोया गया, जमजम से धोया गया। तो जमजम का बड़ा मकाम है कि सीने अनवर को इससे धोया गया था। फिर इसका मकाम और भी ज्यादा बन जाता है कि हजरतुल विदा के मौके पर नबी इस्लाम ने जमजम से पानी निकाला और नोश फरमाया, पिया, और पीने के बाद जो बचा हुआ पानी था अल्लाह के हबीब सल्लम ने उसको दोबारा फिर कुएं के अंदर डाल दिया। तो हम अब जब पीते हैं तो हमें दो निस्बतें मिलती हैं, एक जमजम का पानी पीने की निस्बत भी नसीब होती है और दूसरा नबी इस्लाम का बचा हुआ पानी पीने की भी तौफीक नसीब होती है। हदीस मुबारक में है कि मोमिन के बचे हुए खाने में शिफा होती है। तो भाई अगर आम मोमिन के बचे हुए खाने में शिफा है तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बचा हुआ पानी होगा उसमें कितनी शिफा होगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए एक निशानी छोड़ दी, एक तोहफा छोड़ दिया, एक हदिया छोड़ दिया। हदीस मुबारक में है जमजम को जिस नीयत से पिया जाए वो नीयत कबूल होती है। खाने की जरूरत हो और कोई जमजम पी ले तो ये इंसान की भूख को भी मिटाता है, प्यास की नीयत से पिए तो प्यास को भी मिटाता है, और इसको बरकत के लिए अपने चेहरे पे मले, अपने सर पे डाले, अपने सीने पे डाले तो भी ये एक अच्छा तरीका है। तो जमजम को पीना और उस जगह पे फिर दुआएं मांगना, दो रकत नफल पढ़ के दुआ मांगे अल्लाह से और जमदम की निस्बत से दुआ मांगे। मिसाल के तौर पे ये दुआ मांगे कि या अल्लाह आपने जिस तरह जमजम को पिलाकर सीने में ठंडक अता फरमा दी, अल्लाह अपनी मोहब्बत का जाम अता फरमा कर भी मेरे सीने में ठंडक अता फरमा दीजिए। अल्लाह जिस तरह आपने जमजम पिलाकर जाहिर की प्यास को बुझा दिया, अल्लाह अब इसके बदले मेरे मौत की वक्त की प्यास को भी अपनी रहमत से बुझा दीजिए। अल्लाह जिस तरह आपने जमजम पिलाया, अब इसके हर हर कतरे के बदले अल्लाह हमें इल्म का समुंदर अता फरमा दीजिए, इल्म का बाब अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमने जमजम पिया, इस जमजम को हमारी जिस्मानी रूहानी बीमारियों के लिए शिफा बना दीजिए। अल्लाह ताला शिफा भी अता फरमा देते हैं। और ये भी दुआ मांगे कि अल्लाह जिस तरह आपने दुनिया में जमजम पिला दिया, अब हमें क्यामत के दिन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज कौसर का भी जाम अता फरमा दीजिए। अगर एक नेमत अता फरमाई है तो अल्लाह दूसरी नेमत भी अता फरमाइए। ये भी दुआ मांगे कि अल्लाह आपने दुनिया में हमें जमजम पिला दिया, अब जब जन्नत में जन्नती जाएंगे तो जन्नतियों की तीन किस्में होंगी। कुछ जन्नतियों के लिए चश्मे होंगे जिनसे वो पानी पिएंगे, ऐने यशरब बिहल मुकर्रबून, ऐसे चश्मे होंगे जन्नत में जिनसे अल्लाह के मुकर्रब बंदे शराब तहूर पिएंगे, चश्मे होंगे उनके लिए। अच्छा, कुछ ऐसे होंगे कि जिनको वहां के खुदाम प्यालों में भरकर पिलाएंगे, ये और इज्जत अफजाई है। और कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनको अल्लाह ताला खुद शराब तहूर पेश करेंगे, वसकाहुम रब्बहुम शराबन तहूरा, और अल्लाह उनको शराब तहूर अता फरमाएंगे। ये मेहमान नवाजी का सबसे आला दर्जा है। हम अपने घरों में भी देखते हैं, कई लोग बड़ी कोठियां होती हैं तो वो क्या करते हैं कि बाहर के गेट के साथ एक कूलर लगा देते हैं इलेक्ट्रिकल का, कि कोई मेहमान आए, कोई मिलने आए, कोई घास काटने वाला, कोई माली काम करने वाला, कोई बाहर चौकीदार, उनको प्यास लगे तो वो इस कूलर से खुद ही पानी भर के पी लिया करें। ये एक दर्जा है। और दूसरा दर्जा ये है कि कुछ मिलने वाले लोग आते हैं तो अंदर से खादिम को कह दिया जाता है जी कि ठंडा पानी लेके जाओ, और वो गेट पे फलां बंदा मिलने आया है उसको वहां मशरूब पिला दो। ये दूसरा दर्जा है। और तीसरा दर्जा ये है कि जब कोई बहुत खास महबूब दोस्त आता है तो उसको हम घर में अंदर बुलाते हैं, और फिर हम किचन से दूध सोडा बनवाते हैं या मिल्क शेक बनवाते हैं, और फिर खुद ट्रे लेके उसके पास जाते हैं और उसको खुद भर के पानी या वो जो होता है मशरूब वो अपने हाथों से गिलास पेश करते हैं। ये मेहमान नवाजी का सबसे आला तरीका। तो जन्नत में भी ये तीन ही तरीके होंगे, कुछ चश्मों से पिएंगे, कुछ को खुदाम पिलाएंगे, और कुछ को अल्लाह ताला खुद शराब तहूर पिलाएंगे। तो हम अल्लाह से ये दुआ मांगे कि अल्लाह हमें भी जन्नत में है तो बड़ी बात है, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मसला यह है कि जब फकीर बड़े दरवाजे से मांगता है तो फिर अपनी औकात से बढ़ के मांगता है। तो ये नियत करें कि अल्लाह हम भी अपनी औकात से बढ़ के मांग रहे हैं, तमन्ना ये है कि जन्नत जाएं तो आप शराब तहूर पिलाएं, वसकाहुम रब्बहुम शराबन तहूरा। तो इस निस्बत से दुआएं मांगेंगे अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाएंगे। फिर जमदम के बाद हतीम, हतीम जिस साइड पर हजर असद है उसकी जो अपोजिट साइड है जहां मिजाज रहमत है, उस साइड पर एक छोटी सी दीवार है, सेमी सर्कल बना हुआ है। तो बैतुल्ला और उस दीवार के दरमियान की जो जगह है उसको हतीम कहते हैं, उसके अंदर भी दुआ मांगने से दुआ कबूल होती है। हदीस मुबारका में आयशा सिद्दीका ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे बतलाया कि जो बैतुल्ला हरम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था उसकी लंबाई जरा ज्यादा थी। जब कुरैश मक्का ने उसको रीबिल्ड करना चाहा तो उन्होंने नियत की थी कि हम मस्जिद पर हराम माल खर्च नहीं करेंगे, और जो उनके पास हलाल माल था वो जरा थोड़ा हो गया, तो भाई अब क्या करें। उन्होंने कुछ सोचा, चलो इसकी लेंथ कम कर देते हैं। तो उन्होंने बैतुल्ला की लंबाई को तकरीबन 2 मीटर छोटा कर दिया और बैतुल्ला को बिल्ड कर दिया। नबी सामने फरमाया कि मुझे तुम्हारी कौम के फितने में पड़ने का डर ना होता तो मैं बैतुल्ला को उसकी असल बुनियादों पर कर देता। फिर नबी सामने बताया कि अल्लाह ताला ने यह इसलिए छोटा करवा दिया कि मेरी उम्मत का हर बंदा तो बैतुल्ला के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ने कुछ हिस्से को खाली रखवा दिया कि जो बंदा वहां पहुंच जाएगा उसको बैतुल्लाह के अंदर जाकर दुआ मांगने का सवाब मिल जाएगा। तो ये हकीम अल्लाह ने हमारे लिए आसानी फरमा दी। देखें भाई, आज भी अंदर लोग जाते हैं मगर कई मरतबा वो खास लोग होते हैं, खवास होते हैं, बाहर मुल्कों के बादशाह, वजीर आजम, मेहमान खसूसी, वो अंदर भी जाते हैं, उनके लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो डिग्नेटरीज होती हैं। भाई हम तो हैं आम बंदे, हम क्या करें। हमारे लिए अल्लाह ने रहमत फरमा दी, हतीम को खोल दिया कि चलो तुम जब तवाफ करके फारिग होना, मौका मिले हतीम में आके दो रकत नफल पढ़ लेना, तुम्हें बैतुल्लाह के अंदर नफल पढ़ने का सवाब नसीब हो जाएगा। तो वहां जब भी मौका मिले, मर्द भी नमाज पढ़ते हैं, हतीम में औरतें भी नमाज पढ़ती हैं, तो वहां भी दुआ मांगा करें। फिर हतीम के बाद जहां बैतुल्लाह का दरवाजा है, इसके अपोजिट साइड पर पहले दरवाजा हुआ करता था, यानी दो दरवाजे होते थे आमने सामने, लोग एक दरवाजे से बैतुल्लाह में दाखिल होते थे और दूसरे दरवाजे से नीचे उतर जाते थे। वो दरवाजा बाद में बंद कर दिया गया, उसको बाब मसदूद कहते हैं। वो हजरत आजम अलैहिस्सलाम का किबला है, यानी आजम अलैहिस्सलाम जब आए थे उन्होंने उस तरफ से नमाज पढ़ी थी किबला रुख होकर, वहां भी दुआएं कबूल होती हैं। तो अगर मौका मिले तो आप उस साइड पर भी जाएं और वहां भी दो रकअत नफल पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगे। फिर अगली साइड है रुकन यमानी और हजर असवद के दरमियान जो पूरी साइड बनती है, यानी हतीम के अपोजिट साइड पे, ये भी कबूलियत दुआ की जगह है। इस जगह पर आमतौर पर दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरत हसना वकिना अज़ाबन्नार। हदीस मुबारका में है कि यहां पर 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी होती है कि जो बंदे इस जगह पर दुआ मांगे, फरिश्ते उस दुआ पर आमीन कहें। अब खुद सोचें, हमारी दुआ पर कोई अल्लाह का वली आमीन कह दे तो कितनी बड़ी बात है, दुआ कबूल हो जाएगी। और वहां पर अल्लाह के 70,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं, इसलिए उस जगह पर जाकर बैठना और वहां दुआ मांगना ये अहम बात है। हमारे हजरत ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह जब मताफ में जाते थे तो उसी सिमत में बैठते थे। एक तो है जहां पर तवाफ हो रहा होता है, तो जहां तवाफ खत्म होता है उसके पीछे जो जगह है, सिमत वही हो, आप ऐसे बैठे कि आपके लेफ्ट साइड पर रुकन यमानी आए और राइट साइड पर हजर असवद आए, और वो जो सिमत है उसके साथ तरफ आप बैठ के वहां नमाज पढ़े। इस जगह की चंद खसूसियात हैं। पहली खसूसियत तो यह है कि नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किबला अव्वल की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म था, बैतुल मुकद्दस की तरफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि मैं बैतुल्लाह की तरफ रुख करूं, आपकी चाहत ये थी। तो उस वक्त आप ये फरमाते थे कि आप उस सिमत में आ जाते थे जहां लेफ्ट साइड पर रुकन यमानी है और राइट साइड पर हजर असद है। उस सिमत में क्या है, उस सिमत में तीन मरकज अनवार हैं, एक तो बैतुल्ला शरीफ सामने होता है और एक उसी सिमत में आगे बैतुल मुकद्दस है, सेम डायरेक्शन है, तो किबलतैन जमा हो जाते हैं। तो नबी इस्लाम हिजरत से पहले किबलतैन की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, यानी असल हुक्म तो था उस वक्त किबला अव्वल की तरफ, मगर नबी इस्लाम इस किबले को भी साथ जमा फरमा लेते थे। इसलिए जब फतेह मक्का के दिन नबी इस्लाम तशरीफ लाए तो आपने जोहर की इमामत इसी सिमत में करवाई, आपने शाह मामा बांधा हुआ था और आपने ऐसे इमामत करवाई कि किबलतैन जमा थे उस वक्त। यूं नबी इस्लाम ने दुआ नमाज पढ़ाई और दुआ मांगी। अब उसमें एक तीसरा मरकज और भी दाखिल हो गया, वो क्या कि ये मक्का मुकर्रमा है और दूर बैतुल मुकद्दस है और दरमियान में मदीना तैयबा है, लाइन एक ही बनती है। तो हम अगर उस सिमत में बैठे तो हमारे सामने तीन मरकज अनवार होंगे, बैतुल्ला भी होगा, बैतुल मुकद्दस भी होगा और नबी अलैहिस्सलाम का रौज़ा अनवर भी होगा। तो हमारे लिए तो मोहब्बत के तीन मरकज एक लाइन में सामने आ गए। इसलिए हज़रत सिद्दीकी रहमतुल्लाह वहां बैठते थे और नीयत ये करते थे कि उन तीनों अनवार जगह से अनवारात आ रहे हैं और मशायख के कुलूब से होते हुए मेरे दिल में शुमा रहे हैं। तो उस जगह पर बैठना और दुआएं मांगना इसकी अपनी अहमियत है। फिर उसके बाद है بیت اللہ شریف کو دیکھ کر دعا مانگنا، یہ جو دیکھ کر دعا مانگنا ہے اس کی اپنی برکت ہے. حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جن میں سے 20 رحمتیں صرف ان لوگوں کے لیے جو بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی صرف بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھتے رہنا یہ بھی عبادت ہے، اور اس پر بھی اللہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو بیت اللہ کو دیکھیں، یہ دن میں تو ذرا مشکل ہے لیکن رات میں آسان ہے. آج کل معمول یہ ہونا چاہیے کہ ہم دن میں ظہر کے بعد بھی بے شک قیلولہ کر لیا کریں، آرام کر لیا کریں، اشراق سے لے کے ظہر تک بھی سو لیا کریں، دن میں نیند پوری کر لیا کریں، اور رات کا ٹائم ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے اور لمبا ٹائم ہوتا ہے. یہ کوشش کریں کہ ہم مطاف میں گزاریں، مطاف میں بیت اللہ کو بیٹھ کے دیکھیں، وہاں تلاوت کریں، وہاں نفل پڑھیں، دعائیں مانگیں، یقیناً دعائیں قبول ہوں گی. تو یہ ایک اچھا موقع جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے. بیت اللہ کو مانگ دیکھ کے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ امریکہ میں ایک جگہ اس عاجز کا جانا ہوا، واشنگٹن اسٹیٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں ایک شہر ہے سفوکین کے نام سے. تو وہاں اس عاجز نے بیان کیا تو جو مسجد کے صدر تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت، ایک امریکی لڑکی ہے جو مسلمان ہوئی ہے اور بہت نیک ہے، اس کی نیکی کو دیکھ کے مسلمان عورتیں اچھی مسلمان بن جاتی ہیں، وہ اتنی نیک ہے. تو وہ چاہتی ہے کہ آپ سے کچھ سوالات پوچھے، تو آپ اس کو ٹائم دے دیں. ہم نے کہا بہت اچھا. چنانچہ ایک جگہ پردہ لگا ہوا تھا، وہ پردے کے پیچھے بیٹھ گئی اور اس نے کوئی 2 گھنٹے مجھ سے کوشچن پوچھے. چونکہ نئی نئی مسلمان ہوئی تھی، اس کو بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں تھیں. آج نے اس کو بتائیں، سنتی رہی، پوچھتی رہی. 2 گھنٹے اس کی بات جب مکمل ہو گئی تو اس نے کہا جی کہ اب میرا دل جو ہے مطمئن ہے کہ مجھے کنفیوز کرنے والا میرے ذہن میں نہیں ہے، میں بہت مطمئن ہو گئی ہوں. اس وقت میں نے اس سے کہا کہ اچھا اب میں آپ سے ایک کوشچن پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی پوچھیں. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ مسلمان کیسے ہوئی؟ ہر بندہ جو مسلمان ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، یا اس کا دوست ہوتا ہے جس نے اسے متوجہ کیا، یا اس نے خواب دیکھا ہوتا ہے، یا کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے جب وہ مسلمان ہوتا ہے. تو آپ بتائیں کہ کیا وجہ بنی؟ اس نے کہا جی کہ مجھے کسی بندے نے تو مسلمان ہونے کے لیے نہیں کہا. میں نے کہا کیا مطلب، پھر آپ کیسے مسلمان ہوئی؟ کہنے لگی بس میں بیت اللہ کی وجہ سے مسلمان ہوئی. تو مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی کہ بیت اللہ کی وجہ سے مسلمان ہوئی. کہنے لگی کہ میں اصل میں عیسائی تھی اور میرا خاوند یہودی تھا، ہم دونوں انجینئر تھے، ہماری شادی ہو گئی اور ہم ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے. دفتر والوں نے اپنا ایک برانچ جو تھی وہ جدہ میں کھولی اور انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا کہ جو لوگ یہاں سے جدہ آفس جائیں گے 2-3 سال کے لیے، ان کی پے بھی ڈبل کر دی جائے گی اور 3 سال کے لیے ان کو اس جگہ پر واپس پھر بلا لیا جائے گا. تو ہم میاں بیوی نے سوچا کہ تنخواہ بھی زیادہ ہو جائے گی اور ہم ایک نئے ملک میں رہنے کا تجربہ بھی پا لیں گے، اور ہمارا بچہ بھی کوئی نہیں تھا، ہم دونوں میاں بیوی تھے. تو ہم نے اپلائی کر دیا اور ہم دونوں کو وہاں جاب مل گئی. تو ہم جدہ چلے گئے. کہنے لگے میرے لیے مسلمان ملک میں رہنا ایک نیا تجربہ تھا. ہم عام طور پہ رات کا کھانا کسی ریسٹورینٹ پہ کھاتے اور پھر اس کے بعد ڈرائیو کرتے ایک ذرا، تاکہ ہماری مطلب ہے طبیعت میں نشاط آ جائے. اب یہ ڈرائیو کے دوران میں کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھتی کہ جو سفید چادروں میں لپٹے ہوئے ہیں، تو مجھے یہ لباس عجیب سا لگتا. میں اپنے خاوند سے پوچھتی کہ یہ کیا لباس ہوا کہ یہ چادروں میں 2 بندے لپٹے ہوئے ہیں؟ وہ مجھے کہتا کہ اصل میں ایک شہر ہے مکہ مکرمہ، اس میں ایک جگہ ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ بیت اللہ ہے. اس میں جو لوگ جاتے ہیں نا عبادت کرنے کے لیے، تو وہ یہ احرام باندھ کے جاتے ہیں. تو میں کہتی کہ چلو ہم بھی اس جگہ کو دیکھتے ہیں جس کو بیت اللہ کہتے ہیں. وہ کہتا ہم نہیں جا سکتے اس لیے کہ وہاں پر غیر مسلم نہیں جا سکتا. پھر ایسا آتا کہ حج کے موقع پہ ہم زیادہ لوگوں کو دیکھتے احرام کی حالت میں. پھر میرے دل میں شوق ہوتا کہ ہم بھی جا کے دیکھائیں. وہ کہتا ہم نہیں جا سکتے. کہنے لگے ایک دن میں نے کیا کیا کہ شاپنگ کے لیے نکلی تو ایک جگہ پہنچی جہاں ٹوپیاں پڑی تھیں، تو میں نے اپنے خاوند کے لیے ایک ٹوپی خرید لی اور ایک نقاب اپنے لیے خرید لیا. तो कहने लगी कि मैं घर आई तो मैंने खाविंद को कहा कि अब मैंने बंदोबस्त कर लिया है, हम जाकर उस जगह को देखेंगे। उसने कहा कैसे? मैंने कहा रात को जब खाना खाएंगे फिर मैं बताऊंगी। हमने रात को खाना खाया, उसके बाद उसने मेरे सर पे टोपी रख ली और अपने चेहरे पे नकाब बांध लिया। कहने लगी अब हम देखने में तो यूं लगते हैं कि जैसे हम भी मुसलमान हैं, तो हम जा सकते हैं, हमें अगर किसी ने रोका तो वापस आ जाएंगे, नहीं रोका तो हम चले जाएंगे। मुझे बीवी की तजवीज पसंद आई, मैंने कहा चलो। तो मैंने जद्दा से मक्का की तरफ गाड़ी भगानी शुरू कर दी। अल्लाह की शान के वो कोई ऐसा चेंज का वक्त था जो ड्यूटी चेंज होती है कि एक ही सिर्फ सिपाही खड़ा था पूरी सड़क पे और मल्टी लाइन्स थी और वो कह रहा था कि जाओ जाओ जाओ। तो हम भी उस फ्लो के अंदर वहां से निकल गए। जब निकल गए तो मैंने बीवी को कहा कि हम वो जो चेक पोस्ट थी उससे तो निकल आए। उसने कहा ठीक है चलो हम जाते हैं बैतुल्ला। हम इसी हालत में गाड़ी पार्क की और बैतुल्ला के और हम हरम के अंदर दाखिल हुए दूसरे लोगों के साथ साथ। चलते 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 जब अंदर पहुंचे तो एक जगह पर हम पहुंचे तो हमने एक काले कोठे को देखा जिसके ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ था काला। जैसी हमारी नजर पड़ी ना तो हमारी कैफियत ही बदल गई। थोड़ी देर तो हम दम बखुद होकर उसको देखते ही रहे। फिर थोड़ी देर के बाद जब मैंने अपने खाविंद को देखा, उसकी आंखों में भी आंसू थे और मेरी आंखों में भी आंसू थे। तो मैंने अपने खाविंद से पूछा कि ये क्या है, हम क्यों रो रहे हैं? तो उसने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि ये रियल है, ये हकीकी चीज है, इसलिए हमारी आंखों में आंसू आ गए हैं, हमारे ऊपर इसका इफेक्ट हुआ है, इसके अंदर कोई मकनातीसियत है। कहने लगा, मैंने उसे कहा कि जब ये रियल है और इसके अंदर मकनातीसियत है तो फिर हम इसको कबूल क्यों नहीं कर लेते? कहने लगे, बगैर किसी के कहे सिर्फ बैतुल्ला को देखकर हमारे दिलों पर ऐसा असर हुआ, हम मियां बीवी ने कलमा पढ़ा और हम मुसलमान हो गए। तो अगर बैतुल्ला शरीफ के अंदर ऐसा नूर है कि एक काफिर भी आकर देखता है तो उसका दिल ईमान कबूल कर लेता है, तो अगर कोई मोमिन जाके उसको देखे तो उसको क्या नूर मिलेगा? इसलिए बैतुल्ला को बैठ के देखना ये एक बड़ी इबादत है। आप फायदा उठाएं और बैतुल्ला को देख के अल्लाह से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। एक और भी वाकया है जो मैं बसा औकात तो बड़ी डिटेल से सुनाता हूं, लेकिन आज मैं इजमाली तौर पर आपको सुना देता हूं कि एक इंजीनियर था जो दहरिया था और उसने कई सौ लड़कों को दहरिया बनाया था। अल्लाह की शान के वो बीमार हो गया और उसकी बीमारी ऐसी थी कि जिसका इलाज दुनिया में सिर्फ एक डॉक्टर के पास था, कनाडा में वो डॉक्टर था। वो जब जाने लगा कनाडा इलाज के लिए तो मैंने उसकी टिकट इस तरह से बनवाई कि सऊदी एयरलाइन से वाया सऊदी अरेबिया। उस वक्त पाकिस्तान से डायरेक्ट कनाडा की फ्लाइट नहीं जाया करती थी, बहुत पहले की बात है, 80s की बात है, 80s की। तो उसको मैंने कहा कि भाई आप जो है ना जा रहे हैं तो आपका इलाज होगा और आप सेहतमंद हो जाएंगे, तो आप वापसी आते हुए ना उमरा करके आना। मेरे साथ चूंकि उसकी दोस्ती थी इंजीनियर होने के नाते, कुलीग होने के नाते, वो मुझे इनकार न कर सका और उसने हां में सर हिला दिया कि अच्छा आऊंगा। मैंने उसके भाई को पक्का कर दिया कि देखो भाई तुम्हारे भाई ने सर हिलाया है कि ये उमरा करेगा, तो वापसी को इसको उमरा जरूर करवा के लाना। उसने कहा ठीक है। अब ये लोग चले गए, एक महीना वहां कनाडा में रहे, फिर वापस आए। हम जब मिलने के लिए गए तो हमने देखा कि वो बंदा बिल्कुल सेहतमंद, लेकिन अजीब बात कि जब हम उसके पास गए तो उसने हमें कहा अस्सलाम वालेकुम। मैं हैरान कि ये अस्सलाम वालेकुम कह रहे, ये तो दहरी है, ये तो मानता ही नहीं किसी चीज को, न खुदा को मानता है न दीन को मानता है। तो हमने वालेकुम सलाम तो कहा, लेकिन हम हैरान थे कि ये कह कैसे रहा है। वो मुझसे पूछने लगा पहले खाना खाएंगे या पहले नमाज पढ़ेंगे। मैं और हैरान हुआ, अच्छा ये नमाज की बातें कर रहा है। मैंने कहा भी पहले नमाज पढ़ लेते हैं। जब हम नमाज पढ़ने लगे तो वो भी वजू करके आ गया, जी मैं भी नमाज पढ़ूंगा। मैंने उसको देख के पूछा, मैंने कहा खैरियत तो है? तो वो कहने लगा कि नमाज पढ़ लें फिर मैं आपको तफसील बताऊंगा। चुनाचे हमने नमाज पढ़ी, खाना खाया, फिर उसने तफसील बताई कि जब मैं कनाडा गया तो वहां के डॉक्टर ने कई दिन मुझे अपने पास रखा, लेकिन कोई उसको होप नहीं थी मेरे रिकवरी की। एक दिन ऐसा आया कि उसने मुझे जवाब दे दिया कि मेरे पास इलाज नहीं है, तुम कुछ दिनों के बाद यहीं पे फौत हो जाओगे और अगर तुम्हें जाना है तो घर चले जाओ। मेरे भाई ने मां को फोन किया, मां ने कहा बेटा अगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया है तो बजाय डेड बॉडी लाने के तुम भाई को जीते हालत में ले आओ, हो सकता है मैं उससे कोई बात कर लूं, मैं उसको एक मरतबा देख लूं जिंदगी में। तो मैं अपने भाई को इस हालत में लेके कनाडा से जिद्दा चला, वो सेक्टर हमारा कन्फर्म था। कहने लगे कि मैं वहां से चल पड़ा, जिद्दा आया तो यहां से अगला सेक्टर कन्फर्म नहीं था, दो दिन का गैप था दरमियान में। जद्दा से पाकिस्तान हर रोज की फ्लाइट नहीं थी उस वक्त, दो दिन के बाद फ्लाइट थी। तो जद्दा एयरपोर्ट वालों ने कहा कि हम आपको ट्रांजिट वीजा दे देते हैं, आप जद्दा चले जाएं और अपने मरीज को वहां रखें होटल में, और दो दिन के बाद आप पाकिस्तान चले जाएं। तो मेरा भाई मुझे लेके होटल में आ गया। अब मैंने सब दवाइयां जो है ना वो छोड़ी हुई थी, मैं तंग आ गया था दवाइयों से, मैं जिंदगी से ही तंग था। मैं इंतजार में था कि मैं एक हफ्ता जिंदा रहूंगा या दो हफ्ते, और इस दौरान मुझे तो मरना ही है। मैं मायूस था, एक्यूट डिप्रेशन थी मुझे। कहने लगे अचानक मुझे आपका ख्याल आया, तो मैंने अपने भाई को कहा यार वो जहां मुसलमान जाते हैं और बैतुल्ला जिसको कहते हैं मुझे भी वहां ले जाओ। तो मेरा भाई मुझे व्हील चेयर पे बिठा के वहां लेके गया। कहने लगे जब मैं मताफ में पहुंचा तो मैंने देखा एक काला सा कोठा है जिस पे गिलाफ चढ़ा हुआ है और लोग उसके गिर्द घूम रहे हैं। अब मैं अपने जहन में सोच रहा हूं कि इंसान कितना बेवकूफ है कि इसने खुदा का तसव्वुर भी बना लिया और इसको खुदा का घर भी बना लिया और उसके गिर्द घूम रहा है, ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि उसका जहन बहुत साइंसी था। कहते हैं कि मैं ये बैठ के सोचता रहा। तो इस दौरान फिर क्या हुआ कि मेरे दिल में एक बात आई और मैंने अल्लाह से दुआ मांगी। दुआ क्या मांगी कि या अल्लाह अगर तू मौजूद है, या अल्लाह अगर तू मौजूद है तो मुझे शिफा अता फरमा दे ताकि मैं पैदल चल के तेरे घर का तवाफ करूं तो मैं भी मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह की शान कहता है कि मैंने दवाइयां छोड़ दी। अगले दिन जब सुबह सो के उठा तो मेरे अंदर ताकत थी, मैंने भाई को कहा ले चलो। मैंने उस दिन पैदल तवाफ किया और तवाफ मुकम्मल हुआ तो मैंने कलमा पढ़ा और मैं मुसलमान हो गया। अगर एक दहरिया बंदा बैतुल्लाह के सामने अल्लाह से यह कहता है कि या अल्लाह अगर तू मौजूद है, अभी भी उसका शक था, तू मुझे शफा दे दे तो मैं मुसलमान बन जाऊंगा, अल्लाह उसको भी शफा दे देते हैं और उसकी दुआ को भी कबूल कर लेते हैं। तो अगर कोई मोमिन जो अल्लाह पे यकीन रखता है वो अल्लाह से वहां बैठ के दुआएं मांगेगा तो उसकी दुआएं क्यों नहीं कबूल होंगी। तो ये नौ मकाम हुए। फिर दसवां मकाम मकाम सफा है, और ग्यारहवां मकाम मकाम मरवा, और जो बारहवां मकाम है वो जहां सब दलाईते हैं जहां दौड़ते हैं उसको मकाम मिलैन अखदलैन कहते हैं, यानी दो निशान जहां सब लाइटें लगी हुई हैं। तो इन जगहों पे हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगें। जिस जगह पे भी आप जा सकें आप अल्लाह से दुआ मांगें। अल्लाह ताला हमें अपने दर से मांगने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमारी सब दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमाए। हम में से कौन सा बंदा है जिसके दिल में तमन्नाएं नहीं कि मेरी ये दुआ कबूल हो और ये कबूल हो। भाई किस्मत ने साथ दिया, अल्लाह की रहमत हुई और हम अल्लाह के दरवाजे पे आ पहुंचे। अब इस दरवाजे से भी अगर खाली लौटेंगे तो फिर ये कितनी बड़ी महरूमी है। इसलिए जो बकिया दिन हैं उन दिनों में सिर्फ होटल के कमरे में सोने पे ही इक्तफा न करें, बल्कि आप हरम में जाएं, पांच नमाजें जमात के साथ पढ़ें और फिर रात के वक्त में मताफ में जाके बैठें, दुआएं मांगें, कुरान पाक की तिलावत करें। इन मकामात पे खुसूसन दो दो रकअत करके खूब दुआएं मांगें। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को उन जगहों पे दुआएं मांगते हुए और उनकी दुआओं को कबूल होते हुए देखा है। क्योंकि हर बंदा आता है हजरत हमें बताएं हमारा ये मसला है ये मसला है, तो अक्सर मैं उनको यहां रिकमेंड करता हूं कि भाई इन जगहों पे जाएं, दुआएं मांगें, अल्लाह कबूल करेंगे। तो कम अज कम हजारों लोगों ने इस आदत को फीडबैक दी, हमारी दुआएं कबूल हुई। कितनी बे औलाद औरतें थी, उनको मैंने कहा वहां जाके मांगे, अल्लाह ने उनको बेटे की नेमत अता फरमाई। कितने लोग कर्जों में दबे हुए थे, वहां गए और अल्लाह ने कर्जों से निजात अता फरमाई। तो आप भी इन जगहों से दुआएं मांगिए और फिर देखिए अल्लाह ताला दुआएं कैसे कबूल करते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने दर से अता फरमाए और गैर की मोहताजी से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। www.dasquran.com